यूट्रोफिकेशन वो प्रक्रिया है जिसमें जल निकायों के नीचे और तटीय क्षेत्रों में पौधों के शरीर के शैवाल बायोमास की वृद्धि होती है। ये पौधों के जल निकाय में फॉस्फेट, नाइट्रेट जैसे पोषक तत्वों की वृद्धि के कारण होता है। जल में पोषक तत्वों की सांद्रता बढ़ने से जलीय पौधों, मैक्रोफाइट्स और फाइटोप्लांकटन में वृद्धि होती है। तब वो जलराशि वहीं नष्ट हो जाती है। सरल शब्दों में, जल निकाय में शैवाल और जलीय पौधों की वृद्धि के कारण कई रासायनिक परिवर्तन होते हैं और निरंतर रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप जल निकाय के पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन को सुपोषण के रूप में जाना जाता है। शैवाल और पौधे जल निकायों में उपस्थित पोषक तत्वों का उपभोग करते हैं और वे जल निकायों के अंदर जैविक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अतिरिक्त शैवाल और पौधे अंततः विघटित हो जाते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है और इसके कारण जल निकायों में ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे कम हो जाता है। इससे समुद्री जल का पीएच कम हो जाता है। इस प्रक्रिया को महासागरीय अम्लीकरण कहा जाता है। समुद्री जल का अम्लीकरण मछली और शेलफिश की वृद्धि को धीमा कर देता है और मोलस्क में शेल गठन को रोक सकता है। यूट्रोफिकेशन के परिणामस्वरूप मछलियां और जलीय जानवर रहने योग्य वातावरण की कमी के कारण मर जाते हैं। यूट्रोफिकेशन के उदाहरण शैवाल के खिलने से बाल्टिक सागर में दुनिया का सबसे बड़ा मृत क्षेत्र बन गया है। लॉरेंटियन ग्रेट झील है और कई मीठे जल की झीलें गर्मियों में मृत क्षेत्र में बदल जाती हैं। यूट्रोफिक शन का वर्गीकरण यूट्रोफिकेशन मुख्य रूप से दो कारणों से होता है, प्राकृतिक रूप से और मानवीय गतिविधियों के कारण। प्राकृतिक यूट्रोफिकेशन जलाशय के लिए एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। जैसे ही तालाब या झीलें धीरे धीरे रेत, धूल, पौधों की मृत पत्तियों और मृत जीवों से भर जाती हैं, तो उस क्षेत्र में यूट्रोफिकेशन होता है। ये बहुत धीमी प्रक्रिया है। हालांकि मानवीय गतिविधियों ने जलीय पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्वों की लोडिंग के माध्यम से यूट्रोफिकेशन की दर और सीमा को तेज कर दिया है। प्राकृतिक सुपोषण यूट्रोफिकेशन प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा भी हो सकता है, विशेषकर झीलों, तालाबों में। ये प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान और अन्य बाहरी कारकों द्वारा की जा सकती है। जब झीलों को मृत या सड़ चुके पौधों की पत्तियों से निरंतर पोषण मिलता है। कई अन्य स्रोत जैसे मृत या सड़े हुए जानवर और मिट्टी का कटाव भी जल निकायों में पोषक तत्व भरते हैं। इसके बाद जल निकाय जैविक खाद से भर जाता है और उसमें ऑक्सीजन का स्तर लगातार कम हो जाता है। इससे उस पर पौधों की वनस्पति बढ़ने में मदद मिलती है। सांस्कृतिक सुपोषण सांस्कृतिक सुपोषण मानवीय गतिविधियों द्वारा होता है। यह मीठे जल के तालाबों, झीलों, खारे जल निकायों और उथले जल वाले क्षेत्रों में हो सकता है। सांस्कृतिक यूट्रोफिकेशन के लिए अत्यधिक पोषक तत्वों के कई स्रोत हैं। यह मानवीय गतिविधियों से किया जा सकता है, जिसमें खेतों में अत्यधिक उर्वरक डालना, अनुपचारित सीवेज को ताजे जल निकाय में खोलना, अपशिष्ट जल निकासी का सीधा प्रवाह, घरेलू कचरे को जल में फेंकना, नाइट्रोजन प्रदूषण पैदा करने वाले ईंधन के आंतरिक दहन सम्मिलित हैं। सुपोषण के परिणाम यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप जल निकाय में हानिकारक फाइटोप्लांकटन के घने फूल बनते हैं जो जल की स्पष्टता को कम करते हैं। ये जल के अंदर सूरज की रोशनी को आने से भी रोकता है। इससे तटीय क्षेत्रों में पौधे नष्ट हो रहे हैं। यह उन शिकारियों के लिए भी समस्याएं पैदा कर रहा है जिन्हें जल के अंदर शिकार का पीछा करने और पकड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब ये घने शैवालीय फूल अंततः मर जाते हैं तो उनके सूक्ष्मजीवीय अपघटन के कारण घुलित ऑक्सीजन गंभीर रूप से कम हो जाती है, जिससे जलीय जीवों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की कमी के कारण एक एनॉक्सिक मृत क्षेत्र बन जाता है। साथ ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर से कार्बन की कमी हो जाती है और जल में पीएच का स्तर कम हो जाता है। इसे जल निकाय का अम्लीकरण कहा जाता है और पीएच में ये कमी जलीय जीवों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। जल के अम्लीकरण और जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की वृद्धि कम हो सकती है और जलीय जीव मर सकते हैं और यह मोलस्क मोती बनाने वाली घोंघे को भी मार देता है। कुल मिलाकर ये जलीय जीवों के जीवन को नष्ट कर देता है, साथ ही जलराशि भी नष्ट हो जाती है। यूट्रोफिकेशन की रोकथाम जल निकाय से पोषण के स्रोत को कम करें, कृषि अपशिष्ट फॉस्फेट और नाइट्रोजन युक्त जैव उत्पादों आदि जैसे उर्वरक अपशिष्टों को झीलों और तालाबों में प्रवाहित न होने दें। तालाबों में कपड़े आदि धोने के लिए फॉस्फेटिक डिटर्जेंट का उपयोग न करें। फॉस्फेटिक डिटर्जेंट तालाब के किनारे घास की वृद्धि शुरू कर देता है। अपने पालतू जानवर को तालाबों और झीलों में न नहलाएं और तालाबों में स्वतंत्र जल क्रीड़ा करने के लिए न छोड़ें। ये भी सुपोषण का एक कारक है। वे जल में कीचड़ भी बनाते हैं और अपना शारीरिक अपशिष्ट भी जल में छोड़ देते हैं। समय समय पर जल का वायु संचार और उपचार करें, इसके साथ ही फाइटोप्लांकटन और अन्य पौधों को समय समय पर जल से निकालते रहें।